आज कल
श्रोताओ, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मिरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम इराक में आगामी 12 मई 2018 को अत्यधिक महत्व रखने वाले संसदीय चुनाव हैं, जिस पर हम अगले कुछ कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे।
इराक में सन 1925 से सन 1958 में अब्दुल करीम कासिम के नेतृत्व में सैन्य विद्रोह तक 10 संसदीय चुनावों का आयोजन हुआ, जिनमें हमेशा इराक नरेश और उनके निकटवर्तियों का प्रभाव नजर आया। अब्दुल करीम कासिम के विद्रोह से इराक में राजशाही शासन का अंत हो गया। सन 1970 में और बाज़ पार्टी के विद्रोह के बाद देश को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाने का कानून पारित किया गया, लेकिन उसे सन 1980 तक लागू नहीं किया गया। सन 1980 के बाद संसद का पुनर्गठन हुआ और सद्दाम के पतन तक इराक में 6 संसदीय चुनावों का आयोजन हुआ, लेकिन इस पूरी अवधि में संसद पर बाज़ पार्टी का पूरी तरह से नियंत्रण रहा। सद्दाम के पतन के बाद से अब तक 2006, 10 और 14 में 3 संसदीय चुनावों का आयोजन हो चुका है और सन 2018 में होने वाले संसदीय चुनाव नए इराक का 4th संसदीय चुनाव और इराकी इतिहास का 20वां चुनाव होगा।
नए इराक के संविधान में विधायिका को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। अनुच्छेद 47 के अनुसार संघीय सरकार में विधायिका 2 सदनों पर आधारित होती है, एक लोकसभा और दूसरे प्रांतों व क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की राज्यसभा पर। 48वें अनुच्छेद के अनुसार संसद इराकी जनता के प्रतिनिधियों पर आधारित होती है और हर 1,00,000 इराक पर एक सांसद होना ज़रूरी है, जिसे सीधे रूप से आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। इस संसद में महिलाओं की संख्या सांसदों की 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए। 55वें अनुच्छेद के अनुसार सांसद 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये 4 वर्ष की अवधि संसद की पहली बैठक से शुरू होती है और आखिरी बैठक तक जारी रहती है। संसदीय चुनाव जारी संसद की अवधि खत्म होने से 45 दिन पहले होते हैं। इसी तरह अनुच्छेद क्रमांक 59 में सांसदों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, जो संघीय कानून बनाने, सरकार की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को पारित करने, युद्ध और आपातकाल को पारित करने, फेडरल अपील कोर्ट के सदस्य और प्रमुख, अटॉर्नी जनरल, न्यायपालिका निरीक्षण परिषद के प्रमुख का निर्धारण, राजदूतों और विशेष पदों के लिए नामित अधिकारियों, उच्च कमांडरों की पुष्टि, राष्ट्रपति पर महाभियोग विश्वासमत आदि जैसे कर्तव्यों पर आधारित होती है।
इराक में सन 2018 के चुनाव कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है। सन 2018 के चुनाव के महत्व का एक पहलू यह है कि ये इराक पर आतंकवादी संगठन दाइश के हमले के बाद पहला चुनाव है। वास्तव में सन 2014 में इराक में होने वाले संसदीय चुनाव के बाद ही इराक के 1/3 क्षेत्र पर दाइश के कब्जे की भूमिका तैयार हुई थी, क्योंकि सन 2014 के संसदीय चुनाव में नूरी मालिकी के नेतृत्व में कानून की सरकार गठजोड़ ने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का निर्धारण इस गठजोड़ का कानूनी अधिकार था। लेकिन इराक के अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों, विशेषकर नूरी मालिकी के विरोधियों ने इसका कड़ा विरोध आरंभ कर दिया। उनका कहना था कि अगर नूरी मालिकी तीसरी बार भी इराक के प्रधानमंत्री बन गए तो इससे इराक में नए प्रकार की ताराशाही का खतरा पैदा हो जाएगा। इस विषय पर विवाद बढ़ता गया और इस दौरान आतंकवादी गुट दाइश कुछ इराकी गद्दारों और विदेशी शक्तियों की मदद से इराक के मोसुल नगर में घुस गया और फिर उसे अपनी राजधानी बनाकर इस गुट ने धीरे धीरे इराक के 1/3 भाग पर कब्जा कर लिया।
ऐसे हालात में इराक में 2018 के आम चुनाव का आयोजन होगा कि ये देश पिछले 4 वर्षों के दौरान किसी भी अन्य चीज़ से अधिक दाइश से संघर्ष में फंसा रहा है। सन 2014 में कानून की सरकार गठजोड़ और अद दावा पार्टी की ओर प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत हैदर अलेबादी इन 4 वर्षों के दौरान इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने ही दिसंबर 2017 में इराक में दाइश के अंत की औपचारिक रूप से घोषणा की। इराकी मामलों के विशेषज्ञ जैद अली ने अल जजीरा की वेबसाइट पर अपने एक विश्लेषण में लिखा है कि हैदर अल अबादी इराक में दाइश के अंत के ट्रंप कार्ड के साथ इस देश के संसदीय चुनाव के मैदान में कदम रखेंगे और उनका समर्थन कानून की सरकार गठजोड़ से बाहर की पार्टियां भी करेंगी।
इराकी संसदीय चुनाव के अहम होने की दूसरी वजह यह है कि इस बार के चुनाव में स्वयं सेवी बल के आधार पर एक नया गठजोड़ भी चुनावी मैदान में उतरा है। हशदुशाबी अर्थात इराकी स्वयं सेवी बल ने इस देश में दाइश के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण व प्रभावी भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से इराकी जनता में उसे बेहद लोकप्रियता हासिल है। लेकिन चूंकि स्वयं सेवी बल एक सरकारी सुरक्षा संगठन है, इसलिए कानून के अनुसार वो स्वयं चुनाव में भाग नहीं ले सकता, जिसकी घोषणा इराकी चुनाव आयोग और स्वयं सेवी बल के कमांडरों ने भी की है। लेकिन इस बल से संबंधित राजनीतिक संस्थाएं और दल नया गठजोड़ बनाकर चुनाव में भाग ले सकती हैं। स्वयं सेवी बल से संबंध रखने वाले अल-फतह गठजोड़ ने चुनाव में भाग लेने के लिए तैयारी की घोषणा की है और यही चीज़ इराक के इस बार के चुनाव को नए इराक में होने वाले पिछले 3 चुनावों से अलग करती है। और चूंकि इराकी स्वयं सेवी बल इस्लामी गणतंत्र ईरान से निकट हैं, विदेशी शक्तियों विशेषकर सऊदी अरब, अमरीका तथा कुछ इराकी दलों ने व्यापक स्तर पर इस दल के खिलाफ प्रचार आरंभ कर रखा है, यहाँ तक कि वो खुलकर उन सभी दलों की चुनाव में भागीदारी का विरोध कर रहे हैं जो इराकी स्वयं सेवी बल से निकट समझे जाते हैं, लेकिन उनके विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
सन 2018 के इराकी चुनाव के महत्वपूर्ण होने की एक अन्य वजह यह है कि जिस तरह से ये चुनाव दाइश के बाद होने वाला पहला चुनाव है, उसी तरह इराकी कुर्दिस्तान में अत्यंत विवादास्पद जनसंग्रह के बाद होने वाला पहला चुनाव भी है। सद्दाम के बाद इराकी कुर्दों ने इस देश में तीसरी ताकत के रूप में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की है, जिसके दौरान उन्हें इस देश में शक्ति विभाजन में अच्छा हिस्सा मिल गया। लेकिन इसके बावजूद इराकी कुर्दिस्तान में प्रतिबंधवादी गतिविधियां यथावत जारी रही हैं। इसीलिए इराकी कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार ने देश व विदेश में व्यापक विरोध के बावजूद इस सरकार के पूर्व प्रमुख मासूद बारेजानी की हठधर्मी की वजह से पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इराक से कुर्दिस्तान के अलग होने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन कराया। लेकिन हैदर अल अबादी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने करकुक और अन्य विवादास्पद क्षेत्रों में सेना भेजकर इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
इस दौरान स्वयं कुर्द दलों के मध्य भी मतभेद पैदा हो गए, जिसकी वजह से इराक की केंद्रीय सरकार के लिए काम और आसान हो गया। मसूद बारेजानी की योजना विफल हो गई और उन्होंने अपनी कुर्द सहयोगी पार्टी पर गद्दारी का आरोप भी लगाया। सन 2018 के चुनाव ऐसी हालत में आयोजित होंगे कि जब कुर्द दलों के बीच और केंद्रीय सरकार से उनके मतभेद यथावत जारी हैं। ये चुनाव इराक के नए वातावरण में कुर्दों के लिए परीक्षा भी साबित हो सकते हैं। इस संदर्भ में इराकी मामलों के विशेषज्ञ मुस्तफा हबीब का कहना है कि करकुक में चुनाव प्रक्रिया और फिर उसके परिणाम इराक में अगले चुनाव के अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल होंगे।
इराक के आगामी संसदीय चुनाव इस देश में पिछले 3 संसदीय चुनाव की भांति नए नेताओं के प्रभाव के निर्धारण की नज़र से भी महत्वपूर्ण होंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद सभापति को सांसद चुनते हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को भी सांसद से विश्वास मत लेना पड़ता है।
यह चीज इराक के आगामी चुनाव से नहीं बल्कि इस देश के आगामी संसद से संबंधित होगी, जिसमें संसद का ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ हसन शुक्रीपुर का कहना है कि इराक में आगामी संसदीय चुनाव में विदेशी खिलाड़ियों के मध्य प्रतिस्पर्धा किसी भी अन्य समय से अधिक होगी। सऊदी अरब, अमरीका, तुर्की और इस्लामी गणतंत्र ईरान इराक के आगामी चुनाव पर विशेष रूप से नजर रखे हैं।